लाउडेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं, तो कुछ में ईश कीर्तन सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। मेरे दाहिने दृष्टि डाल और देख, मेरी परवाह कोई नहीं करता, मेरे लिए कोई शरण नहीं, मेरे जीवन की कोई चिंता नहीं करता। मैंने यह कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है, जीवितों के देश में मेरा भाग्य। मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूँ, मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली हैं। मुझे बंदी गृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहूं। जब तू मेरा उपकार करेगा तो धर्मी मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 142वें भजन के अंतिम चार पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 8 पदों वाले स्तोत्र ग्रंथ के 142वें भजन में दुख के क्षणों में प्रभु से प्रार्थना की गई है। 142वें भजन के उक्त पद युग युगांतर तक के मनुष्यों से निवेदन करते हैं कि प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करने में वे न डरें, अपनी प्रार्थनाओं को बारंबार उनके समक्ष रखें और उनके अनुग्रह के पात्र बने। श्रोताओं, 142वें भजन के 5वें पद में दूसरी बार दाऊद प्रभु ईश्वर को पुकारता है, कहता है, तू ही मेरी शरण है, जीवितों के देश में मेरा भाग्य है। कोई मानव प्राणी नहीं जो मेरी रक्षा का जिम्मा ले, कोई नहीं जो मेरी पैरवी करे। यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य यह कि भजनकार ईश्वर को पुकारने के लिए उक्त पदों में उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता जिनका प्रयोग वह चौथे पद में करता है। कहता है कि जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। फलस्वरूप दाऊद हमें प्रार्थना के एक नए पहलू के बारे में बता रहा था। वह बता रहा था कि हिमायत करने वाला कौन है तथा उससे क्या अपेक्षा की जाती है। अपनी प्रार्थना में दाऊद प्रभु से कहता है, तू ही मेरी शरण है और यही मेरे जीवन का अर्थ है। श्रोताओ, 142वां भजन हम में से किसी की भी प्रार्थना हो सकती है। यह भजन हर उस मनुष्य की प्रार्थना हो सकती है जो जीवन की कठिन घड़ी से गुजर रहा हो, यह उसकी सांत्वना का स्रोत बन सकता है। भजन के अंतिम पद के शब्द हैं, मुझे बंदी गृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहूं। जब तू मेरा उपकार करेगा तो धर्मी मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। श्रोताओ, ये शब्द हमें आत्मा की अंधेरी रात का स्मरण दिलाते हैं। जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता और ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है, तब हमें भी लगता है कि हम बंदी गृह में कैद हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे क्षणों में प्रार्थना ही हमारा सहारा है। ईश्वर मेरी शरण है, ईश्वर ही हिमायत करने वाले और ईश्वर ही हैं न्यायकर्ता। इसीलिए तो दाऊद कहता है, मुझे बंदी गृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहूं। जब तू मेरा उपकार करेगा तो धर्मी मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे।
प्रभु का नाम सहारा मेरा,
प्रभु का नाम सहारा मेरा,
मैं हूँ नैया हो किनारा,
मैं हूँ नैया हो किनारा,
प्रभु का नाम सहारा मेरा,
प्रभु का नाम सहारा।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 143वें भजन पर दृष्टिपात करें। 12 पदों वाला यह भजन भी दाऊद द्वारा रचा गया भजन माना जाता है। इसमें संकट के समय प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसके प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं: प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे, अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्याय प्रियता के अनुरूप मुझे उत्तर देने की कृपा कर, अपने सेवक को अपने न्यायालय में न बुला, क्योंकि तेरे सामने कोई भी प्राणी निर्दोष नहीं है। शत्रु ने मुझ पर अत्याचार किया, उसने मुझे पछाड़कर रौंद डाला, उसने मुझे उन लोगों की तरह अंधकार में रख दिया जो बहुत समय पहले मर चुके हैं। इसलिए मेरा साहस टूट रहा है, मेरा हृदय मेरे अंतरतम में संत्रस्त है। श्रोताओं, 142वें भजन में हमने देखा कि भजनकार उस वक्त बंदी गृह में अपने मुकदमे की प्रतीक्षा में था। इसलिए ऐसा संभव है कि बंदी गृह के दिनों में ही उसने 143वां भजन रचा हो। बंदी गृह के कठिन क्षणों के समय ही वह पुकार उठता है, कहता है, प्रभु मुझे अपनी अदालत तक मत घसीट, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तू मुझे दोषी पाएगा। सच तो यह है कि इन पदों में भजनकार स्वीकार करता है कि इस धरती पर जीवन यापन करने वाले किसी भी मनुष्य का संबंध ईश्वर के साथ सही संबंध नहीं है। अस्तु, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संत पॉल रोमियो को और गलातियों को प्रेषित पत्रों में भी 143वें भजन की उक्त पंक्ति को उद्धृत करते हैं। रोमियो को प्रेषित पत्र के 3 अध्याय के 20वें पद में संत पॉल लिखते हैं, क्योंकि संहिता के कर्म कांड द्वारा कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने धार्मिक नहीं माना जाएगा। संहिता केवल पाप का ज्ञान कराती है। इसी प्रकार गलातियों को प्रेषित पत्र के 2 अध्याय के 16वें पद में हम पढ़ते हैं, हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले, क्योंकि संहिता के कर्म कांड द्वारा किसी को पाप मुक्ति नहीं मिली है। श्रोताओं, संत पॉल के कहने का तात्पर्य यही था कि कोई भी मनुष्य यह दावा न करे कि ईश्वर के सामने वह निर्दोष है, वह यह दावा न करे कि वह सुरक्षित है, क्योंकि प्रभु येसु ख्रीस्त के क्रूस बलिदान द्वारा हमें मुक्ति मिली है। इसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे हृदयों में जो प्रेम है वह ईश्वर के अनुपम बलिदान का फल है। अस्तु, हम सबसे अपेक्षा की जाती है कि हम भी अपने जीवन के क्रूस को उठाकर प्रभु येसु का अनुसरण करें। भजन के 3 और 4 पदों में भजनकार कहता है, शत्रु ने मुझ पर अत्याचार किया, उसने मुझे पछाड़कर रौंद डाला, उसने मुझे उन लोगों की तरह अंधकार में रख दिया जो बहुत समय पहले मर चुके हैं, इसलिए मेरा साहस टूट रहा है, मेरा हृदय मेरे अंतरतम में संत्रस्त है। श्रोताओ, यहाँ बहुत समय पहले मर चुके शब्दावली ईश्वर से मिली जीवन की पूर्णता के विरुद्ध शब्द हैं। वस्तुतः शत्रु मृत्यु अथवा कोई असाध्य रोग भी हो सकता है। भजनकार अपनी उस कठिन स्थिति में प्रभु से प्रार्थना करता है जब वह शत्रुओं से घिरा है और ये शत्रु आने वाली मृत्यु या कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इस प्रकार 143वां भजन संकट के समय हमें प्रार्थना हेतु आमंत्रित करता है।
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 4 फरवरी मानव बंधुत्व पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पहली बार मनाया जा रहा है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है। समारोह में वर्चुअल रूप से संत पापा फ्रांसिस भी भाग ले रहे हैं। इसी दिन 4 फरवरी 2019 को संत पापा फ्रांसिस एवं अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तायब ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में मानव बंधुत्व पर दस्तावेज में हस्ताक्षर किया था। आयरिश कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने मानव भ्रातृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस का समर्थन किया है। सम्मेलन के न्याय एवं शांति विभाग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष एलन ने एक बयान जारी कर कहा है, मानव प्राणी और ईश्वर पर विश्वास करने वालों के रूप में हमें जो एक साथ लाता है वह उससे बढ़कर है जो विभाजन के कारण आसानी से दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा, मानव भ्रातृत्व पर दस्तावेज अन्याय, गरीबी, चरमपंथ और पर्यावरणीय पतन जैसे चुनौतियों को रेखांकित करता है जिनका सामना हम विश्व भर में कर रहे हैं। अतः उन्होंने आयरिश कैथोलिक कलीसिया को निमंत्रण दिया है कि वे भले समारी के उदाहरणों को देखें, जिसको प्रेरितिक पत्र फ्रतेली तुत्ती में चिन्हित किया गया है कि यूं ही पार नहीं हो जाना है, बल्कि सभी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी की देखभाल करना है। अतः डबलिन के धर्माध्यक्षों की आशा है कि विश्वासी इस पर चिंतन करेंगे एवं अंतर धार्मिक वार्ता और अंतर सांस्कृतिक वार्ता के हित में अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे, सहिष्णुता की संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे, दूसरों को स्वीकार करेंगे और शांतिपूर्ण एक साथ जी सकेंगे ताकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्या जो मानवता के एक बड़े हिस्से पर भारी पड़ रहा है उसको कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। अंततः मानव भ्रातृत्व पर दस्तावेज का हवाला देते हुए मोनसिन्योर माइक गुकेन ने कहा, विश्वास एक विश्वासी को दूसरे व्यक्ति को भाई के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है जिसको सहारा और प्यार दिया जाना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास जिन्होंने विश्व, जीव जंतुओं और मानव प्राणी की सृष्टि की है, हम जानते हैं कि उनकी दया में हम एक समान हैं। विश्वास से इसी मानव भ्रातृत्व को प्रकट करने, सृष्टि की रक्षा करने एवं पूरे विश्व तथा हरेक व्यक्ति को सहयोग देने के लिए बुलाए गए हैं। संगीत एक ऐसी भाषा है जो वैश्विक भाईचारा को पुनः उत्पन्न करता और सहयोग देता है। संत पापा फ्रांसिस ने संस्कृति के लिए परमधम पीठ समिति के तत्वाधान में धार्मिक संगीत के परमधम पीठ संस्थान और परमधम पीठ धर्म विधिक संस्थान संत अनसेल्म यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित 4th अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन के प्रतिभागियों को वीडियो संदेश दिया। संत पापा ने संदेश में कहा कि उन्होंने जो विषय वस्तु चुना है वह कलीसिया समुदाय और संगीत विभाग में काम करने वालों को समृद्ध करेगा, जो कि धम्म विधि एवं सुसमाचार प्रचार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। नबी सायस ने लोगों को प्रभु की स्तुति गाने का आह्वान करते हुए कहा था, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, पृथ्वी के सीमांतों तक उनकी स्तुति करो। संत पापा ने कहा कि बाइबल में हम संगीत की असंख्य प्रेरणा पाते हैं। कलीसिया का संगीत वास्तव में बहुत विविध है और यह धम्म विधि के अलावा संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन, स्कूल, धम्म शिक्षा तथा थिएटर में भी सहयोग देता है। संगीत भी कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अछूता नहीं है। संत पापा ने इस पर गौर करते हुए कहा, हम जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के शुरू होते ही संगीत क्षेत्र के क्रियाकलाप पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने उन लोगों की भी याद की जो इससे बहुत अधिक प्रभावित हैं, खासकर संगीतकार जिन्होंने सामाजिक दूरी बनाकर रखने की मांग के कारण अपने जीवन और पेशे को तबाह होते देखा, जिन्होंने अपनी नौकरी एवं सामाजिक संपर्क खो दी, जबकि कई लोगों ने नई रचनात्मकता के साथ संगीत सेवा प्रदान करते रहने के महत्वपूर्ण प्रयास को जारी रखा। संत पापा ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, यह एक बहुमूल्य समर्पण है, न केवल कलीसिया के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए, नेटवर्क के लिए, संगीत प्रदर्शन हॉल और अन्य स्थानों पर काम करने वालों के लिए जहां संगीत द्वारा समुदाय के लिए सेवा उपलब्ध की जाती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सामाजिक जीवन का यह आयाम पुनः जन्म लेगा, कि हम फिर एक बार गाने बजाने और संगीत का आनंद लेने तथा एक साथ गाने के लिए जमा हो पाएंगे। नबी सायस आगे कहते हैं, मैं बहुत समय तक निष्क्रिय रहा, मैं मौन रहा और अपने को रोकता रहा। संत पापा ने कहा, एक कुशल संगीतकार मौन के मूल्य को जानता है। आवाज और मौन के बीच प्रत्यावर्तन फलप्रद है और सुनने के लिए प्रेरित करता है, जो वार्ता हेतु आधारभूत भूमिका अदा करता है। संत पापा ने संगीतकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आम चुनौती है एक दूसरे को सुनना। धम्म विधि में हम ईश्वचन को सुनने के लिए निमंत्रित किए जाते हैं। ईश्वचन हमारी प्रमुख रचना है और समुदाय पृष्ठभूमि। ईश्वचन अर्थ का स्रोत है, यह समुदाय की यात्रा को आलोकित करता और इसका पथ प्रदर्शन करता है। मुक्ति इतिहास को बतलाने के लिए यह कितना आवश्यक है कि उन मुहावरों और भाषाओं का प्रयोग किया जाए जिनको लोग अच्छी तरह समझते हैं। उसी तरह संगीत भी बाइबल के वचनों को नए एवं विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत करने में मदद देता है, ताकि दिव्य वचन लोगों के मन और दिलों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंच सके। उन्होंने कहा, आपने अपनी सभा में सबसे विविध संगीत रूपों पर ध्यान देने का चुनाव किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, खासकर आदिवासी सभ्यताओं के लिए, जिसमें नृत्य एवं उत्सव के अन्य विविध तत्वों के साथ संगीत के दृष्टिकोण को एकीकृत किया गया है। इस संदर्भ में सुसमाचार प्रचार की सेवा में आकर्षक कथाएं उभर सकती हैं। पाठ और संदर्भ अब एक नए रूप में मौजूद हैं, जो हमें हमारी यात्रा को एक साथ फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि दिलों की एकता को आवाजों की एकता से गहरा किया जाता है। संत पापा ने अंत में उन्हें ईश्वर को समर्पित किया और कामना की कि वे उनके प्रयासों को फलप्रद बनाएं। इंग्लैंड और वेल्स के धर्माध्यक्षों ने इथियोपिया के टाइग्रे प्रांत में हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद और शांति प्रयास हेतु सरकार से एक आवश्यक अपील की है। इथियोपिया के टाइग्रे प्रांत में टाइग्रे के प्रांतीय सरकार और इथियोपिया संघीय सरकार के बीच पिछले साल नवंबर माह में शुरू हुए संघर्ष के कारण मानवीय स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण करीब 1 मिलियन लोग पलायन कर चुके हैं और जो एजेंसियां वहां काम कर रही हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर भुखमरी की चेतावनी दी है। अतः वर्तमान संकट को देखते हुए इंग्लैंड और वेल्स के धर्माध्यक्षों ने बढ़ते भय पर अपनी आवाज दी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।